हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के इस महायज्ञ में आप सबका स्वागत है। अब तक हमने पढ़ा कि जब तक ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक हम दुखी होते रहेंगे, और ज्ञान के प्रमाण बताए उसमें से ऑथेंटिक परफेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज है शब्द प्रमाण। उसके बाद श्रीमद् भगवद गीता की अहमियत, और आगे हमने भगवद गीता के अंदर जो टॉपिक्स हैं उसमें सबसे पहले जीव यानी आत्मा के विषय में पढ़ा, जो कि हम हैं, हमारा अस्तित्व आत्मा है। उसके बाद शरीर क्या है, प्रकृति है, उन किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है उसके विषय में पढ़ा, और उसके आगे हमने पढ़ा कि भगवान क्या है, भगवान का अस्तित्व है, वो निराकार भी है साकार भी है। तत्पश्चात हमने ये भी श्रवण किया कि भगवान एकमात्र कृष्ण है। रियल ज्ञान ये है कि कृष्ण भगवान है और हम सब कृष्ण के दास हैं, और जितने भी देवी देवता हैं वो सब कृष्ण के दास हैं। अब यहाँ तक हमें समझ में आ गया। अब मेन क्वेश्चन जो हमारा है वो यहाँ पर ये रेज होता है कि अगर भगवान कृष्ण है और हम सब कृष्ण के दास हैं, तो फिर हम संसार में कर क्या रहे हैं? हमें भगवान के पास होना चाहिए, हमें संसार में भेजा क्यों? ये मेन क्वेश्चन है। ये एक ऐसा प्रश्न है जो कि हर जीव को करना चाहिए, अपने हृदय में उसके ये क्वेश्चन होना चाहिए कि मेरे इस संसार में अगर मेरे क्रिएटर ने मुझे पैदा किया है, कृष्ण ने मुझे बनाया है, तो इस संसार में भेजने का पर्पस क्या है? व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड क्रिएशन ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स? ना सिर्फ मनुष्य को, ये भगवान ने 33 करोड़ देवी देवता बनाए, भगवान ने इतने सारे 84 लाख योनियां बनाई और ये संसार बनाया, ये सब बनाने के पीछे भगवान का मकसद क्या था? भगवान जब हम कहते हैं ना, ये जो संसार है ना, ये जो भौतिक जगत जिसको बोलते हैं, वास्तव में अगर भगवान की 100% शक्ति को देखा जाए ना, तो ये भौतिक जगत जो है वो 25% है। वास्तविक जो गोलोक वृंदावन धाम है वो क्या है, वो 75% है, वो बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं कि गोलोक वृंदावन धाम बस एक छोटा सा कमरा भगवान को दे दिया है, वहां पर भगवान रहते हैं, नहीं नहीं बहुत बहुत बड़ा है, वहां पर बहुत भक्त हैं भगवान की सेवा करने वाले। यहाँ पर ये क्या है, ये जो भौतिक जगत क्या है, ये एक जेल है। जैसे हमारा कराची कितना बड़ा शहर है, उसमें जेल कितनी छोटी होती है, छोटी सी जेल होती है, उसमें सारे अपराधी होते हैं, ऐसा तो नहीं जेल। इसी तरह से जो भौतिक जगत है ना, ये जो संसार है वो एक जेल की तरह है, उसमें सब कैदी बैठे हुए हैं। अब कैदियों के लिए छोटा सा ये संसार है, लेकिन क्योंकि कैदी बहुत ज्यादा है ना, तो हम लोगों को जेल में जो कैदी होते हैं ना, उनको बाहर की लाइफ का पता ही नहीं होता है कि बाहर कितनी बड़ी ना सुविधा वाली जिंदगी है, कितना मजा है, कितना। तो हम इस संसार में रहकर यहीं पर मजा कर रहे हैं, हमको ज्ञान ही नहीं है कि इस जेल से निकलना है, बाहर जाएंगे तो इतना स्वतंत्र। जैसे कैदी कैसे अंदर जब जेल में होता है तब उसका कोई अपना नहीं होता, लेकिन जब बाहर निकलता है तो उसके माँ बाप सब होते ना बाहर। लेकिन यहाँ पर संसार में हमें याद रहता है ना कि अभी हमने अपराध किया था, इसलिए हमें जेल में डाल दिया गया है। अब जब मेरा ये अपराध खत्म हो जाएगा या मेरी पनिशमेंट पूरी हो जाएगी, तो फिर वापस से मैं अपने घर चला जाऊंगा, ये सोचते हैं ना। लेकिन मनुष्य या कोई भी जीव जब संसार में आता है, तो क्योंकि बहुत बहुत जन्मों की ये चक्कर चल रहा है, तो हमें याद नहीं रहता है कि पहले पहले हम भगवान के पास रहते थे, भगवान हमारे माता पिता की तरह होते, और फिर हम लोग उनके यहाँ पर ही रहते थे, वो हमारा घर होता था। अभी मैं जल्दी से इस जेल से स्केप करके उधर जाऊंगा और वहां पर मुझे भगवान के पास रहना है, वहां पर मुझे आनंद आएगा, ये सब भूल जाते हैं, एकदम भूल गए ना, इसलिए हम यहाँ से निकलने के बारे में भी नहीं सोचते। लेकिन अगर नहीं पता, इसका मतलब ये थोड़ा है कि जेल नहीं है, पता ही नहीं है। अगर कोई किसी को, जैसे कोई कैदी हो, उसको खबर नहीं हो कि ये जेल है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है ना कि वो स्वतंत्र है या वो जेल में नहीं है, ये उसका घर तो नहीं हो गया, फिर उसे बताना चाहिए। इसी तरह भगवान जो है वो माता पिता आते हैं, अगर कोई जेल में चला जाए ना तो पागल हो जाए, उसकी यादें खत्म हो जाए, तो भी जो माता पिता है वो किसी न किसी तरह से उसको बताते हैं कि भाई मैं आपका पिता हूँ, मेरे घर पे आओ। तो उसी तरह से भगवान भी अलग अलग तरीकों से हमें बार बार बताने की कोशिश करते हैं, कभी गुरु भेजते हैं तो कभी शास्त्र, कभी स्वयं आके कहते हैं पिता हमस्य जगतो, मैं बेटा मैं हूँ तुम्हारा बाप, मेरे घर पे आ जाओ। और जब तुम मेरे घर पे आ जाओगे यद गत्वा न निवर्तन्ति, वहां से तुम्हें कोई नहीं निकालेगा। जब तक तुम मेरे घर पे नहीं आओगे यहाँ जेल में, तो तुम्हें सजाएं मिलती रहेंगी। इसलिए तुम कोशिश करो, अपनी सजा को पूरा करो इस जेल में, और गंद मत करो, और ज्यादा ऐसे काम मत करो कि तुम्हें और भी इसमें ज्यादा फंसना पड़े। तो फिर हमें ये सब भगवान अलग अलग तरीकों से बताते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये प्रश्न तो रेज होता ही है कि अपराध कैसे किया हम लोगों को संसार में, हमने अपराध कैसे किया? हम तो भगवान के पास रहते थे, शुरू में क्यों भेजा? शुरू में तो नहीं भेजना चाहिए था। हम जब वहां पर रहते थे तो गौलोक वृंदावन नाम से, तो हमें भगवान श्री कृष्ण ने क्यों संसार में भेजा? शुरू में क्या हुआ था? तो शुरू में क्या हुआ था वहां से स्टार्ट करते हैं। शुरू में कुछ नहीं था, खाली कृष्ण थे। ठीक है, भगवान की दो प्रकार की शक्तियां थी। अब मैं जो वर्ड्स बोल रही हूँ ना, उसको थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ सुनोगे तो वो बिल्कुल आपको समझ में आएंगे, लेकिन एकदम उसमें पूरा आपको कंसंट्रेट करना है कि वर्ड्स क्या बोल रहे हो। भगवान की दो शक्तियां, एक पराशक्ति एक अपराशक्ति। पराशक्ति का मतलब होता है जो ऊपर गोलोक वृंदावन धाम में रहने वाली शक्ति, और एक अपराशक्ति वो भगवान की शक्ति है, भगवान की मर्जी है, उसको जब चाहे यूज करे। जैसे आपके अंदर भी बहुत सारी शक्तियां हैं, आप जब चाहे उसे यूज कर सकते हो। तो भगवान के अंदर एक अपराशक्ति, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं? देखो, पराशक्ति समझ में आ गई ना, परे लोक वाली शक्ति। सो सिर्फ और सिर्फ जीव आत्मा आता है उसमें, और कोई दूसरी चीजें नहीं आती है। लेकिन जो अपराशक्ति है उसमें क्या क्या आता है मैं बताऊं, उसको प्रकृति बोलते हैं। अपरा शक्ति के क्या क्या नाम है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? उसको प्रकृति बोलते हैं, भौतिक शक्ति बोलते हैं, अपरा शक्ति बोलते हैं, और महत ब्रह्म बोलते हैं। ठीक है, ये सब जो भौतिक शक्ति है ना, इसको बोलते हैं अपरा शक्ति। उसमें क्या क्या है, इसमें इसको महत तत्व भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये सारे वर्ड्स जब भी यूज होंगे तो ये अपराशक्ति है, और उसमें क्या क्या आता है वो सुन लो पहले। ठीक है, अपराशक्ति, भौतिक शक्ति, महत ब्रह्म, महत तत्व, इसमें क्या क्या आता है? ठीक है, एक ही है, नाम अलग अलग हैं, अलग अलग शास्त्र में अलग अलग तरीके से उसका नाम दिया गया है, लेकिन उसमें टोटल 24 चीजें हैं। टोटल 24 चीजें हैं जो कि भगवान की भौतिक शक्ति यानी अपरा प्रकृति में आती है। ठीक है, पहला पांच महाभूत। महाभूत मतलब पांच ऐसी चीजें हैं जो जिनसे हर चीज बनती है। महाभूत मतलब फर्स्ट जिससे चीजें बनती है ना, जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं महाभूत उनको बोलते हैं। वो कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। पृथ्वी मतलब धरती, जल मतलब पानी, अग्नि मतलब आग, वायु मतलब हवा, और आकाश मतलब स्पेस, जगह। ठीक है, ये पांच महाभूत हैं। इस संसार में जो भी चीज आपको नजर आ रही है उसमें डेफिनेटली इनमें से कोई ना कोई चीज या फिर ये सारी चीजें यूज हुई होंगी। जैसे पत्थर हो, कंकर हो, लकड़ी का दरवाजा हो, घर हो, कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, जो भी हो, ये पांच चीजों में से यूज करके उसमें उसको बनाया हुआ है, ऐसा शास्त्र कहता है। ये पांच महाभूत है, और उसके साथ भगवान ने जो ये जीव मतलब हम बनाए हैं उसमें क्या है, प्रकृति में और क्या है, पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, पांच कर्म इंद्रियां हैं। अब ज्ञान इंद्रियां वो होती हैं जिससे हम ज्ञान लेते हैं। क्या होती हैं? आंख, कान, नाक, त्वचा, रसना। आंख मतलब आईज, कान मतलब ईयर, नोज नाक मतलब नोज, और आंख का नाक, त्वचा मतलब स्किन, और रसना मतलब टंग। ठीक है, ये ज्ञान इंद्रियां हैं। ज्ञान इंद्रियों से क्या करते हैं, उनको यूज नहीं, उनको बस खाली वो खुद ब खुद वो अपना कार्य कर रही होती हैं। उनसे नॉलेज प्राप्त होती है। क्या नॉलेज प्राप्त होती है? आंख से देखते हैं तो पता चलता है ये दृश्य सुंदर है या खराब है, कोई भी दृश्य हो, कोई मनुष्य हो, कुछ भी हो। ठीक है, कान से सुनकर ज्ञान प्राप्त होता है कि जो वॉइस मुझे आ रही है वो किसी की है, मेरे पापा ने बुलाया, मम्मी ने बुलाया है, या कुछ टूटा है, जो भी, कान से खुद ब खुद उसको कुछ करना नहीं पड़ रहा होता है, वो स्वतः बस ऐसे ही वो अपना ज्ञान खुद ब खुद ले रहा होता है नाक से। जैसे हम घर में बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अपना कार्य स्टडी रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं और स्मेल आ जाती है, मतलब फ्रेग्रेंस आती है कि भाई किचन में कुछ पक रहा है उसकी, या फिर है ना कुछ जल जाता है उसकी फ्रेग्रेंस ऐसे आती है स्मेल, तो नाक से भी ज्ञान प्राप्त हो रहा है। ये ज्ञान हुआ, ज्ञान मतलब आपको नॉलेज होती है, किसी न किसी तरह से पता चलता है। स्किन से मतलब त्वचा से कैसे ज्ञान हासिल होता है कि जो चीज पे मैं हाथ रखती हूँ वो क्या है, ठंडा है, गर्म है, नरम है, सख्त है, सॉलिड है, लिक्विड है, सब पता चल जाता है। ठीक है, उसके बाद है टंग यानी टेस्ट, रसना जिह्वा जिससे टेस्ट लेते हैं, तो उससे भी ज्ञान प्राप्त होता है कि जो मैं खा रही हूँ वो मीठा है, कड़वा है, तीखा है, खट्टा है या फिर टाइट है, कैसा है, वो हमें वो सब कुछ पता चलता है। ठीक है, ये पांच ज्ञान इंद्रियां मैं आपको ये जो भगवान की भौतिक शक्ति ना महत्त्व उसके विषय में बता रही हूँ, सही है। और पांच कर्म इंद्रियां हैं। कर्म इंद्रियां क्या हैं? हाथ, पैर, जिह्वा, लिंग तथा गुदा। ठीक है, ये पांच कर्म इंद्रियां हैं। उसके बाद है पांच इंद्रियों के विषय, इसको बोलते हैं इंद्रिय गोचरा संस्कृत में या फिर हिंदी में इंद्रिय गोचरा, इंद्रियों के विषय जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं ना, आंख, कान, नाक, त्वचा, रसना, ये ज्ञान इंद्रियां हैं। ठीक है, इनके विषय कौन से हैं? रूप, रस, स्वाद, गंध, स्पर्श। आंख का विषय ऑब्जेक्ट, मतलब आंख का विषय क्या है? रूप, उसको कोई ना कोई रूप चाहिए, दृश्य चाहिए, देख वो देखता रहता है खुद ब खुद। आंख जब तक खुली होगी और आपके हृदय में जब तक आत्मा होगी, दिल धड़कता है, तब तक आप कुछ ना कुछ अपनी आंख से देखते रहोगे, सही है। और नाक का विषय क्या है? उसका नाक का विषय है सुगंध या दुर्गंध, यानी कोई भी बू। कान का विषय साउंड, कोई भी आवाज। और टेस्ट, जुबान का विषय क्या है? कि कोई ना कोई टेस्ट आपको आता है, स्वाद। और त्वचा यानी स्किन का विषय क्या है? स्पर्श, कोई ना कोई आपको टच जो है वो उसका विषय है। अब देखो हमारे पास कितनी चीजें हो गई, पांच महाभूत, पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां और पांच विषय, इंद्रियों के विषय। ये कितनी हो गए? पांच 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 पांच, टोटल 20 हो गए। वापस से बताऊं, पांच महाभूत कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पांच हो गए। उसके बाद पांच ज्ञान इंद्रियां, आंख, कान, नाक, त्वचा, रसना, कितने हुए? 10। और पांच ज्ञान कर्म इंद्रियां, हाथ, पैर, जिह्वा और लिंग तथा गुदा, ये कितने हो गए? 15। और उसके बाद पांच इंद्रियों के विषय कौन कौन से? रूप, रस, स्वाद, गंध, स्पर्श। ठीक है, ये 20 हो गए। अब उसके बाद देखो, ये सारी चीजें मिलकर कार्य करती हैं। कोई भी संसार में होता है तो ये सारी चीजें, पहले इंग्रेडिएंट्स चाहिए, फिर कर्म जो हम कर रहे हैं उनके लिए हाथ, ये जो कर्म इंद्रियां हैं वो सब चाहिए, ज्ञान इंद्रियों उनको है ना सोचने के लिए, ज्ञान हासिल करने के लिए ज्ञान इंद्रियां चाहिए, और उनके ऑब्जेक्ट्स चाहिए, देखने रूप रस ये सब चाहिए। ठीक है, अब इन सबको आपस में कैसे मिलाया जाए, उनके लिए आपको तीन चीजें चाहिए। एक तो आपको बुद्धि चाहिए जिससे आप डिसीजन लो के कैसे चाहे कैसे करना है। ठीक है, और आपके पास मन होना चाहिए। मन क्या करेगा? थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, ये काम करेगा, सोचेगा, फील करेगा और विल करेगा। और एक है अहंकार। अहंकार का मतलब होता है मैं करता हूँ। संसार में आपके आकर आपके अंदर अहंकार होता है कि मैं करता हूँ। वास्तविक अहंकार क्या है? कि मैं दास हूँ, लेकिन यहाँ पर कि ये मेरा है। जो भी संसार में आप जो भी चीज इन चीजों से मिलाकर क्रिएट करते हो तो आप क्या बोलते हो? दिस इज माय क्रिएशन, है ना। जो भी चीज, अगर किचन में एक आप महिला होती है, वो प्रसाद बनाती है और बोलती है मैंने बनाया है, पीछे नहीं देखती कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स पापा लेकर आए थे, और वो लेकर तो आए थे लेकिन वो वहां पर कारखाने में कहाँ से आए और मार्केट में कहाँ से आए, वृक्षों से आए, वृक्ष में कहाँ से, वो देख कोई नहीं देखता। बस यहाँ पर आके एक अहंकार सम्मिलित होता है कि ये मैंने किया है, दिस इज माय क्रिएशन। ठीक है, वास्तविक क्रिएशन कहाँ से है? क्योंकि ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, ये क्या है? भगवान की अपरा प्रकृति है, ये भौतिक प्रकृति है और ये महातत्व है जिसमें भगवान ने 24 चीजें डाली हैं। ठीक है, समझ में आ गई ये। अब अपरा प्रकृति और परा प्रकृति, इन दोनों को क्लियर करना है कि ये दोनों क्या है। अपरा प्रकृति में क्या होता है, ये भौतिक चीजें होती हैं, और परा प्रकृति में जीव होता है। ये सब क्या है, वास्तव में भगवान की शक्तियां हैं। अपरा प्रकृति भी भगवान की शक्ति है और परा प्रकृति भी भगवान की शक्ति है। ये दो शक्तियां समझ में आ गई। अब इसके साथ साथ चलेंगे भगवान की तीन दूसरी चीजों को, मतलब इसी को साथ इसी में होगा, लेकिन अलग से उनका नाम आता है अक्सर। एक होता है भगवान की तीन शक्तियां, अलग से मैं आपको बता रही हूँ। दो ये समझ में आ गई ना, इन्हीं में है वो दोनों भी। वो तीन क्या है, एक है अंतरंगा शक्ति, एक है बहिरंगा शक्ति, और दूसरी तीसरी है तटस्थ शक्ति। अंतरंगा शक्ति क्या होती है, जो स्वयं भगवान है, समझो भगवान स्वयं, भगवान का दाम, भगवान की निज पार्षद, भगवान की लीला, ये सब अंतरंगा शक्ति है। जो भगवान से रिलेटेड है, भगवान है वो अंतरंगा शक्ति है। ठीक है, भले वो गुरु भेज रहे हैं, या भगवान की अहलादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी आप पे कृपा करती हैं, या भगवान के जो परिकर है, भगवान का दाम, लीलाएं, गुण, नाम, ये सब भगवान की अंतरंगा शक्ति है। ठीक, और भगवान की बहिरंगा शक्ति क्या है, जो अभी मैंने आपको 24 तत्व बताए, इसको माया बोलते हैं। ठीक है, बहिरंगा शक्ति, इस माया, ये महतत्व जो है वो भगवान की बहिरंगा शक्ति है। और अब और ये समझ में आ गया उसके अंदर क्या क्या है, 24 तत्व है माया के अंदर, उसमें से कोई भी चीज आपको अट्रैक्ट कर रही होती है। माया का काम क्या है, आपको भगवान से दूर ले जाना, बस ये काम है। दूर ले जाती है माया, ये टेस्ट है हमारा कि हम भगवान की तरफ कितना जाने की कोशिश करते हैं। माया हमें हमारा रोजाना टेस्ट लेती है, और हम अगर उसमें सफल हो जाएंगे तो भगवान की अंतरंगा शक्ति में चले जाएंगे। लेकिन अब दो चीजें समझ में आ गई, एक भगवान की अंतरंगा शक्ति यानी भगवान स्वयं या उनसे रिलेटेड कोई चीज, और भगवान की बहिरंगा शक्ति यानी भगवान की माया, जिसमें ये 24 तत्व आते हैं। अब तीसरी शक्ति मैंने कौन सी बताई, वो है तटस्थ शक्ति। तटस्थ शक्ति का क्या मतलब होता है, जो तट पर स्थित हो। अब आप बोलोगे तट कौन सा होता है, तट का मतलब होता है चौखट। समझो एक घर है, ठीक है, भगवान का घर है, अंदर जो जाएगा वो अंतरंगा शक्ति के अंदर चला जाएगा, और जो बाहर जाएगा वो माया के काबू में आ जाएगा। ठीक है, और तट का मतलब होता है चौखट। जीव जो होती है, आत्मा जो है, जीव आत्मा जो सारे जीव हैं हम सब, वो सब तटस्थ शक्ति पर खड़े, वो सब तटस्थ शक्ति हैं। तटस्थ शक्ति मतलब वो चौखट पर खड़े हैं। अब जो चौखट पे खड़ा होता है, उसको चौखट पे खड़े नहीं रहने दिया जाता, उसको कंटिन्यूअस माया शक्ति जो बाहर की है वो अपनी तरफ आकर्षित करती है, और भगवान जो है वो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, मतलब फोर्स नहीं करते हैं, लेकिन कभी गुरु, कभी शास्त्र, कभी अना खुद अवतार लेकर आपको, वो चाहते हैं कि आप मेरी तरफ आ जाओ। लेकिन ये जीव जो है, जो सेंटर में खड़ा है ना तटस्थ शक्ति, उसको 100% आप भगवान ने स्वतंत्रता दी है कि आप अंदर जाना चाहो भगवान की अंतरंगा शक्ति में आ जाओ, मोस्ट वेलकम। अगर आप बाहर जाना चाहते हो तो बहिरंगा शक्ति के काबू में चले जाओ, माया में चले जाओ, आप वहां पर भी चले जाओ, आपको नहीं रोका जाएगा। यानी जीव को भगवान ने टोटल फ्रीडम, 100% भगवान ने स्वतंत्रता दी है कि आप जिधर जाना चाहो जा सकते हो। ये सब क्या है, अभी मैं आपको भगवान की शक्तियां बता रही हूँ। ठीक है, अब भगवान की शक्तियां हैं तो भगवान उनको जैसे चाहे यूज करे। ठीक है, जैसे आपके पास जो भी शक्ति होती है, जैसे कोई साइंसदान हो जाता है, कोई साइंटिस्ट होता है, कोई भी इन्वेंशन करता है, तो वो क्यों कर रहा है। हम बोलते हैं ना, अभी हमारा ये क्वेश्चन है कि भगवान ने हमें क्यों पैदा किया, भगवान ने हमें क्यों बनाया। तो पहले भगवान ने क्यों बनाया उसको बाद में देखते हैं, पहले ये देखते हैं हम अगर कुछ बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं, कुछ भी संसार में कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। देखो, जब हम कोई चीज बनाते हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि हम आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, हम उससे मजा लेना चाहते हैं, इसलिए हम बनाते हैं। जैसे पहले हैंड फैन हुआ करते थे, विंजनी से हवा करते थे, फिर इलेक्ट्रिक फैन आ गए, उसके बाद क्यों आए, आनंद प्राप्त करने के लिए, उसके बाद एयर कूलर, और अब एसी का आविष्कार हुआ, क्यों। अब जो बना रहा है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, आनंद की प्राप्ति। वो अपनी इस इन्वेंशन से आनंद प्राप्त करना चाहता है, या फिर उससे मिलने वाले धन से, या फिर उससे मिलने वाले फेम से। यानी कि वो मेन उसका पर्पस अल्टीमेटली क्या वो चाहता है कि वो आनंद प्राप्त करना चाहता है, अगर उस इन्वेंशन से, या फिर उससे मिलने वाले धन से, या फिर किसी को धन की भी आवश्यकता नहीं होती है लेकिन फिर भी जो शोहरत होती है, भाई वाह इसने इतना कार्य किया, तो उस फेम से वो आनंद हासिल करना चाहता है। अब वो क्यों कर रहा है अपनी शक्तियों का इस्तेमाल? इसलिए क्योंकि वो समर्थ है, उसके पास शक्ति है, उसके पास बुद्धि है, वो अपनी बुद्धि को इन शक्तियों को यूज करके आनंद के लिए बनाता है। मतलब इसको कोई ऐसा है ना कि उसकी अपनी चीजें, जैसे भी अपनी शक्तियां हैं, जो भी करना चाहे, क्या कोई उसको कह सकता है कि आप क्यों बना रहे हो? जैसे कोई मोबाइल, कोई है ना LCD कंप्यूटर, जो कुछ भी बना रहा है सिर्फ और सिर्फ आनंद के लिए प्राप्त करता है। अब लेकिन उसको आप बोल नहीं सकते हो आप ये क्यों कर रहे हो, वो बोलेगा कि भाई मेरी मर्जी है, मैं जो भी करूं, उनके पास जितनी शक्ति होती है उतना उसको यूज करते हैं। अब हम सब जीव जो है वो अपनी अपनी शक्तियों को यूज करते हैं, क्यों करते हैं? जीवन के अंत तक यूज कर रहे होते हैं आनंद प्राप्त करने के लिए। ये हमारा अधिकार है, किसी को रोका नहीं जा सकता। अब हमारी शक्तियां सीमित हैं और कृष्ण की शक्तियां असीम हैं। मुख्य शक्तियां जो कृष्ण की मैंने आपको बताई, अपराशक्ति, पराशक्ति और ये तटस्थ शक्ति, ये जो चीजें मैंने आपको बताई है ना, ये भगवान की शक्तियां हैं। अब मनुष्य जैसे अपना कार्य करता है, जैसे अपने किसी भी शक्ति को, जैसे शक्तियां है ना हमारी, जैसे धन भी हमारी शक्ति है, हमारा पावर है ना धन, तो अगर हम धन को यूज करके मोबाइल लेकर आते हैं तो हमारी मर्जी है ना। कोई बोले कि भाई क्यों तुमने अपना धन यूज किया, आपने क्यों मोबाइल लेकर आए, तो आप क्या बोलोगे? मेरे पैसे थे, मैंने लिए, आपको क्या होता है ना। कुछ भी आप ले रहे हो, गाड़ी ले रहे हो, बंगला ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, XYZ, आप क्यों कर रहे हो? अपनी शक्ति का यूज इसलिए करते हैं ताकि हम आनंद हासिल करना चाहते हैं। जैसे एक बच्चा अगर मोबाइल पे गेम खेल रहा है तो क्यों खेल रहा है? क्योंकि उसे मजा आ रहा है, उसकी मोबाइल है, वो खेल रहा है। कोई कंप्यूटर पे बैठता है, कोई लूडो खेलता है, कुछ भी कर रहे हैं, हम लोग कुछ भी कर रहे हैं उससे आनंद प्राप्त करना चाह रहे हैं। ये अलग बात है कि उससे आनंद प्राप्त नहीं हो रहा है, वो अलग बात है, लेकिन हम जो कुछ भी कर रहे हैं, घर में बैठी हुई महिला भी कार्य कर रही होती है, अपनी शक्तियों को यूज करती है, कभी कुछ बनाती है, कभी कोई अलग डिश बनाती है, सब वो आनंद प्राप्त करना चाहती है। कैसे प्राप्त करना चाहती है? या तो उस चीज को खाकर आनंद प्राप्त करना चाहती है, या खिलाकर आनंद प्राप्त करना चाहती है। देखो आनंद की परिभाषा सबकी अलग अलग है। आप किस चीज तरह से आनंद प्राप्त करते हो, आप कोई लोग की अपनी मर्जी होती है, कुछ अपने को अपने ऊपर कोई चीज यूज करके खुश होते हैं, कुछ कोई चीज बनाते हैं और दूसरों को के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उन्हें खुशी मिलती है, लेकिन खुशी हासिल करना, आनंद हासिल करना ही जीव आत्मा का मेन मकसद है। जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे आप खाना बना रहे हो, चाहे आप स्टडी कर रहे हो, चाहे आप ऑफिस जॉब कर रहे हो, इसका अल्टीमेट, आप बोलो आप मुझे स्टडी करने में मजा नहीं आ रहा, लेकिन आप इसलिए कर रहे हो कि आगे जाके आपको डिग्री मिलेगी, आपका फेम मिलेगा, तो आपको है ना आनंद प्राप्त होगा। किसी को ऑफिस जाकर है ना सुबह से लेकर रात तक है ना मेहनत करने में मजा नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है वो अलग बात है, लेकिन उसकी ख्वाहिश क्या है कि इस तरह से स्ट्रगल करने के बाद मुझे जब वो धन मिलेगा तो मुझे आनंद आएगा। यहाँ तक क्लियर है? सब अपना कार्य क्यों कर रहे हैं? आनंद हासिल करने के लिए। अब जिस तरह से मनुष्य को अधिकार है अपनी शक्तियों को यूज करके आनंद प्राप्त करने का, हालांकि उसकी अपनी कोई शक्ति नहीं है, ये बात पहले से ही ध्यान में रखना है कि जो जो शक्तियों को हम यूज करके, भगवान की जितने जितने शक्तियों को यूज करके हम लोग आनंद प्राप्त करते हैं और थकते नहीं ये कहते हुए कि मेरा घर, मेरा पैसा, मेरा धन, मेरा ये, मेरा वो, मेरा पति, मेरा बच्चा, इन चीजों को यूज करके जो हम आनंद प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं, वो सबका सब भगवान का ही है। भगवान ने ही बनाया है, भगवान की पर्सनल प्रॉपर्टी है। ये चीज तो मैं साबित करके आई हूँ, लेकिन यहाँ पर हमारा टॉपिक ये है कि आपके पास जो है भगवान ने आपको दे दिया है, वो उसको आप यूज करके आनंद प्राप्त करना चाहते हो। यहाँ तक सही है? अब आगे है, अब हमारी शक्तियां सीमित है और कृष्ण की शक्तियां असीम है। कृष्ण की जो शक्तियों के बारे में मैंने आपको बताया, भगवान उन शक्तियों को यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं?
आनंद प्राप्त करने के लिए। जैसे हम अपनी शक्तियों को यूज करते हैं ना आनंद प्राप्त करने के लिए, तो जब हमारी नहीं है फिर भी हम कर रहे हैं तो कोई हमें मना नहीं कर रहा है, क्योंकि संसार में दिखता है कि ये हमारा धन है। उसी तरह से भगवान की तो असल में वही सारी शक्तियां भगवान की हैं, तो भगवान को पूरा अधिकार है अपनी शक्तियों को यूज करने का। किस लिए? आनंद प्राप्त करने के लिए। बेशक भगवान आनंद के सागर है। देखो मैं कोई आपको मनगढ़ंत बात नहीं बता रही हूँ, ऑथेंटिक शास्त्र विदत बात है। चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है, रसिक शेखर कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण रसिक शेखर हैं। रसिक शेखर का मतलब होता है सारे रसों का आस्वादन करने वाले, यानी कि जितना भी रस है संसार में, जितना भी आनंद है, उसका शेखर यानी उसका परम हासिल करने वाला, यानी कि सबसे बड़ा रसिक जो है वो कृष्ण है। अर्थात वो सारे रसों का आस्वादन करते हैं। सारे रस, सारा टेस्ट, सारा आनंद वास्तविक में कृष्ण को प्राप्त कराने के लिए, कृष्ण के लिए ही है। क्योंकि कृष्ण की शक्तियां हैं तो मेरी जो चीज होगी उसका आनंद मुझे प्राप्त होना चाहिए ना। उसी तरह भगवान की जो चीजें हैं, चाहे वो तटस्थ शक्ति हो, चाहे वो बहिरंगा शक्ति हो, चाहे वो अंतरंगा शक्ति हो, चाहे पराशक्ति हो, चाहे अपराशक्ति हो, ये सारी चीजें पता है ना आपको, ये सब भगवान की हैं। अब उनके जरिए आनंद हासिल करना भगवान का अधिकार है, भगवान की शक्तियां हैं। तो हालांकि सारे रसों के सागर भी वही हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान हम क्या होता है, हमारे अंदर क्या होता है, जिस चीज से हम आनंद हासिल करना चाहते ना वो हमसे अलग होती है, हमारी क्रिएशन नहीं होती है, वो अलग होती है, लेकिन उसको हासिल करके हम सुखी होना चाहते हैं। लेकिन भगवान क्या है, रसो वैसा कहते हैं, यानी कि वो सारे रसों को उन्होंने ही बनाया, सब रसों का उद्गम उनसे हुआ है। जितना भी आनंद प्राप्त करने की चीजें हैं वो भगवान ने पैदा किए। अब मैं आपको इस टॉपिक की सीरियस बात बता रही हूँ, वो ये कि जब भगवान गौलोक वृंदावन धाम में थे शुरू में, जब कोई भी नहीं था संसार में, कुछ भी नहीं था, आप बोलोगे ना मेरे को क्यों क्रिएट किया, तो भगवान ने आनंद प्राप्त करने के लिए किया। क्यों? क्योंकि जब भगवान गौलोक वृंदावन में थे तो उनकी आनंद प्राप्त करने की वासना पूरी नहीं हुई, कुछ रसों के आस्वादन से वे वंचित रह गए। क्यों? क्योंकि वहां पर सब कृष्ण की नित्य प्रियाएं हैं, सब प्रेमी, सब भगवान से प्रेम करते हैं, केवल कृष्ण प्रेमी है, और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई माया नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। सब भगवान की सेवा कर रहे हैं और भगवान सब सबके है ना प्रेमी है, लेकिन वो प्रेम का असली आनंद लेना चाहते थे, वो लूटना चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि अब यहाँ पर देखो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई ना आपको माया नहीं है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये प्रेम है वाकई में। बस ऐसे ही सब कोई अब यहाँ पर भी देखा जाए संसार में भी, अगर कोई हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, पति पत्नी होते ना उनमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता, वो प्रेम कर सकते हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस हो, जैसे अभी शादी नहीं हुई हो, फिर मुश्किलात आती हैं उनसे मिलने के लिए, बीच में सब लोग है ना मुश्किलात क्रिएट करते हैं, फिर पता चलता है ना वो हमसे कितना प्रेम करते। तो भगवान भी सोचते थे कि कुछ ऐसा खेल रचता हूँ कि अपनी ये जो सारी शक्तियां है ना उनको यूज करता हूँ और माया का खेल रचता हूँ, ताकि मुझे पता चले कि कौन मुझसे ज्यादा प्यार करता है। ये भगवान की खेल है, भगवान की गेम है। तो भगवान ने शुरू में सारी चीजों को बनाने के लिए मेन मकसद क्या था कि वो आनंद हासिल करना चाहते थे। तो भगवान आनंद प्राप्त करना चाहते हैं अपनी चीजों से, और अपने प्रेम को साबित चाहते हैं कि मुझे पता चले कौन कौन प्रेम करते, इसलिए माया का खेल रचते हैं। और क्या करते हैं, अपनी दोनों शक्तियों को, कौन सी दो शक्तियां, एक पराशक्ति यानी जीव आत्मा जो कि भगवान के पास है, और अपराशक्ति यानी कि ये सारी जो चीजें मैंने आपको बताई ना भौतिक ब्रह्मांड में 24 तत्व हैं, इन दोनों को मिला देते हैं। सही, इन दोनों को मिलाते हैं। अपराशक्ति से क्या शरीर बनता है, और पराशक्ति तो आत्मा है, इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, और मनुष्य और 84 लाख दूसरी योनियां बनाते हैं, पहले ब्रह्मा जी को बनाते हैं। अब ये कैसे स्टार्ट करते हैं भगवान, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, लेकिन करते क्या है, किसके लिए कर रहे हैं ये पहले बात बताते हैं, क्योंकि सीरीज में जाएगा तो आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा।
तो भगवान क्या करते हैं, अपरा और पराशक्तियों को मिलाकर मनुष्य और अन्य योनियों को उत्पन्न करते हैं। मनुष्य को यानी जीव आत्मा को पूरी स्वतंत्रता दे देते हैं, क्योंकि वो तट पर खड़ा कर देते हैं उसको और बोलते हैं आपकी मर्जी है, आप जो करना चाहो कर सकते हो। क्योंकि जहाँ स्वतंत्रता नहीं वहां पर तो प्रेम की परीक्षा हो ही नहीं सकती। स्वतंत्रता ही प्रेम की परीक्षा है ना। अगर आपको बाध्य कर दिया जाए कि एक ही व्यक्ति है उसी से प्रेम करना है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो फिर प्रेम साबित कैसे होगा। इसलिए उसने इस संसार में अनेकों प्रकार के आकर्षण रखे। अब इस संसार में क्या है, बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं, सुंदर लोग हैं, धन है, बहुत सारे आकर्षण हैं, अट्रैक्शन पैदा कर दिए भगवान ने। क्योंकि प्रकृति जो है, संसार जो है, वो भी भगवान की शक्ति है। तो भगवान ने अपनी शक्ति को इतना सुंदर बनाया, उसमें बहुत ऐश्वर्य यानी सुंदरता, धन जैसे बहुत धन किसी को अट्रैक्ट करता है, कोई शक्ति की तरफ अट्रैक्ट होता है कि भाई ये कितना शक्तिवान है, कोई ज्ञान की तरफ अट्रैक्ट होता है कि भाई मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, कोई वैराग्य, कोई कीर्ति। बस देखते हम क्या करते हैं, संसार में आकर इन्हीं चीजों में आकर्षित होते हैं। कोई सुंदरता चाहता है, जैसे हीरोइंस वगैरह होती है, वो क्या चाहती है, उनको कुछ नहीं पता होता शास्त्र क्या है, वो बस उनको सुंदरता ही उनके जीवन का लक्ष्य होते हैं। उन्होंने लक्ष्य बना दिया क्योंकि भगवान की माया की तरफ अट्रैक्ट हो गई ना। किसी को धन की तरफ, अभी यहाँ पर अगर देखा जाए तो 99% लोग धन की तरफ आकर्षित होते हैं। बस धन कैसे अर्जित कर रहे हैं, बस ये जीवन का लक्ष्य होता है। तो ये भी बस उसकी तरफ आकर्षित। भगवान ने ये सारे आकर्षण रखे संसार में ताकि वो देखना चाहते हैं कि कौन इन मेरी माया की तरफ आकर्षित होता है और कौन मेरी तरफ आकर्षित होता है। कुछ लोग शक्ति, बस ज्यादा से ज्यादा अपना बॉडी बनाना, जितना मेरे अंदर बॉडी बिल्डर होते हैं ना, जो शक्ति हासिल करना चाहते हैं, शक्तिमान बनना चाहते हैं। कुछ ज्ञान, अभी यहाँ पर स्टडी जो करते हैं ना सारे लोग, जितने भी स्टडी भौतिक स्टडी करते हैं ना, ये भी एक तरह से माया है। क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है, क्या प्राप्त करना है हमें। हम इस संसार में चाहे कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लें तो क्या फायदा है उसका, सिर्फ इतना ही कि एक डिग्री मिलेगी। लेकिन हम इस संसार में आए इसलिए नहीं है, हमारा इस संसार में आने का मकसद क्या है कि हम भगवान को ये दिखाएं कि हम आपसे प्रेम करते हैं। जीव को भगवान ने इस संसार में भेजा इसलिए है कि ये भगवान से प्रेम करता है तो भगवान वापस उसको ऊपर अपने घर में बुला लेगा। यानी कि गेम भगवान खेल रहे हैं ना। और इसी तरह से क्या होता है, भगवान देखना चाहते हैं कि कौन मेरे पास आता है और कौन मेरी माया को अपनाता है। टोटल फ्रीडम दिया। अब यहाँ एक और प्रश्न हो रहा है, उसे भी मैं आपको क्लियर करता रहा हूँ, मतलब क्लियर करके जाती हूँ कि अन्य धर्मों में केवल एक ही खुदा है और हमारे धर्म में 33 करोड़ देवी देवता क्यों है। यानी कि भगवान के अंदर क्या इतना पावर नहीं था कि भगवान खुद ब खुद है ना सारी सृष्टि को सब कुछ प्रोवाइड करें, आग हवा पानी, ये जिसके अलग अलग देवी देवता बनाए हैं। तो भगवान के अंदर इतनी शक्ति नहीं है क्या वो खुद करें, उसको देवी देवता क्रिएट करने की क्या जरूरत थी, इतने सारे 33 करोड़ देवी देवता बना दिए। इसका उत्तर भी यही है, देखिए कि कृष्ण आपके प्रेम की परीक्षा लेना चाहते हैं। वो हर देवी देवता को एक अलग अलग डिपार्टमेंट दे देते हैं। अगर देखो आपके पास एक ही चॉइस हो तो परीक्षा नहीं हो सकती। परीक्षा कैसे होगी, प्रेम तो तब साबित होगा जब करोड़ों की भीड़ में से एक कृष्ण को चुना जाए। के भले इतने सारे हैं लेकिन वास्तविक कृष्ण आप ही मेरी चॉइस आप हो। मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जो सहमत हो जाते हैं छोटी छोटी चीजों से कि भाई हाँ ये भगवान है, वो भगवान है, या इससे प्रेम करो, उससे प्रेम करो, तो समझो वो माया के चक्कर में आ गए। भगवान फंसाना चाहते थे ना। जैसे जब गेम होती है तो क्या करते हैं, सामने वाले को हराना चाहते हैं। वो माया जो है वो आपको हराने की कोशिश कर रही है। अगर आप हार जाते हो तो ठीक है, माया की जीत हो जाती है, लेकिन आप अगर जीत जाते हो तो माया की हार हो जाती है। अब ये हमें देखना है कि हम माया को जीतने दे रहे हैं या खुद जीतते हैं। हमारी जीत कब होगी, जब हम कृष्ण को प्राप्त कर लेंगे। और माया की जीत कब होती है, जब हम कृष्ण से दूर हो जाते हैं और देखते हैं हम माया को ही जीतने देते हैं, कभी खुद जीतने की कोशिश ही नहीं करते। ये हर वक्त माया जो है वो हमें आकर्षित करती रहती है अपनी तरफ, कभी ज्ञान, कभी सुंदरता, कभी बल, इनकी तरफ। और हम इनकी तरफ इतने मोहित हो जाते हैं कि भगवान के विषय में सोचते नहीं हैं, भगवान की तरफ देखते भी नहीं हैं। अच्छा भी नहीं लगता है कि
अब कोई लोग स्टडी, मुझे यहाँ पर ज्यादातर लोग मुझे यही अपना है ना आर्ग्यूमेंट यही पेश करते हैं कि हमारी स्टडी इतनी हार्ड है कि हम लोग है ना भगवान के लिए या गीता के लिए समय नहीं निकाल सकते। ये मेन है, ये माया आपको अपने से दूर, मतलब कृष्ण से दूर कर रही है, अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। देखो आपका स्वभाव दास का है, आपको दासित्व करना पड़ेगा, आपको सेवा करनी पड़ेगी। अब ये चॉइस आपकी है कि आप भगवान की सेवा कर रहे हो या माया की सेवा कर रहे हो। अब आप खुद चॉइस किया हुआ है, माया ये सब ज्ञान धन ऐश्वर्य सुंदरता ये सब भगवान की माया है। अगर हम भगवान को छोड़कर उनकी शरण में जाते हैं तो समझो हम हमसे माया जीत गए। और इस तरह जब हम माया के संपर्क में आते हैं तो अगर माया हमें हमसे जीत जाती है, होता भी यही है कि जब शुरू शुरू में भगवान ने अपने आनंद के लिए जीव को उत्पन्न किया तो माया के संपर्क में आने के बाद उसने माया की तरफ आकर्षण उसका बढ़ गया और उसको ऐसा लगा कि मैं सुखी होना, मुझे सुखी होना है। हालांकि जो क्रिएशन है ना, जैसे अगर आप मोबाइल बनाते हो तो आप उसको कैसे भी यूज करते हो, वो ये नहीं सोचेगी कि मुझे सुखी होना है। उसको उसका काम क्या है, जो क्रिएशन है उसका काम क्या है, जिसने उसको क्रिएट किया है उसको वो आनंद दे। ठीक है, जो भी चीज आप बना रहे हो, जो भी चीज आप कोई टॉय बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, जो चीज बनी है उसका काम क्या है कि बनाने वाले को आनंद दे। लेकिन क्योंकि हम जो चीज बनाते हैं तो उसमें बुद्धि नहीं होती है, उसके अंदर हम आत्मा को फिट नहीं करते क्योंकि हमारी हमारे पास इतनी योग्यता नहीं है कि हम मनुष्य बना सकें या जानवर बना सकें, लिविंग एंटिटीज नहीं बनाते। लेकिन भगवान की योग्यता है, भगवान ने हमें बनाया, क्यों बनाया, आनंद प्राप्त करने के लिए। लेकिन हम इतने, भगवान ने हमें पैदा कर दिया लेकिन हम इतने गद्दार हैं, इतने नालायक हैं कि पैदा होकर बोले कि ठीक है भगवान तुमने बनाया तो कौन सी बड़ी बात हो गई, अब बना तो लिया तुमने लेकिन मैं बन गया हूँ, मैं क्रिएशन हूँ तुम्हारी, मैं तुम्हारी सेवा नहीं करूंगा, मैं अपनी खुशी के लिए कार्य करूंगा। यहाँ पर जो भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी उसका दुरुपयोग करते हैं हम। यानी कि भगवान ने जिस कार्य के लिए हमें पैदा किया वो कार्य नहीं करते हैं, बल्कि अपना एक अहंकार अपना हमारे अंदर आ जाता है कि मैं हूँ आनंद प्राप्त प्रभुत्व जताना, मैं क्या करूंगा इस संसार को भोगूंगा और आनंद प्राप्त करूंगा। और जब हमारी बुद्धि ऐसे कंडम विचार, ऐसे नीच विचार करती है कि जिसने मुझे पैदा किया उसको खुश नहीं करना है, मुझे खुद खुश करना है, तो भगवान कहता है कि ठीक है बेटा कर लो, कर लो, मैं भी देखता हूँ कितना तुम कितना सुखी हो सकते हो, कितना इंजॉय कर सकते हो मेरे बगैर। क्योंकि जब तक हम अपने भगवान से नहीं मिलते, जब तक आत्मा कृष्ण की सेवा नहीं करती है, तब तक उसे माया की सेवा करनी पड़ती है और माया की सेवा करके कभी खुशी हो ही नहीं सकती। भगवान ने बोला ठीक है तुम्हें नजर नहीं आ रहा है लेकिन बेटा इस संसार में मैंने खाली 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 दुख रखे हैं, वो तो जो तुम्हें सुख ऐसे फील हो रहा है कि ये सुख है वो तो दुख का ही एक रिफ्लेक्शन है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये दुख है। इस चीज को साबित करने के लिए श्रीमद् भागवतम में श्रील प्रभुपाद जी एक ऊंट की मिसाल देते हैं। जैसे एक ऊंट होता है वो कांटेदार झाड़ियों में से हरे पत्ते खाता है, जब हरे पत्ते वो खा रहा होता है ना, कांटे वाली झाड़ियां होती हैं, तो कांटे उसके मुंह से चिप मतलब लगते हैं, उसके माउथ में जख्म हो जाता है कांटों कांटे के लगने से और उनके जख्मों से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन वो कांटेदार झाड़ियों को खाने में इतना आनंद प्राप्त कर रहा होता है, वो सोच उसको पता ही नहीं चल रहा होता है कि ये आनंद किसका है, जो मैं खा रहा हूं, जो मेरे मुख से जो ब्लड निकल रहा है उसका जो टेस्ट मेरे मुंह में आ रहा है उसका आनंद मुझे प्राप्त हो रहा है। वो इस बात को देख ही नहीं रहा होता है, वो सोच रहा होता है कि मैं ये खा रहा हूं उसी से मुझे आनंद प्राप्त हो रहा है। लेकिन वास्तविकता क्या है, उसका अपना ही खून जो है वो चूसने का या अपना खून पीने का उसको आनंद आ रहा है। उसी तरह संसार में हम जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें हमारा खून मिला हुआ होता है, हमारा पसीना मिला हुआ होता है। देखिए संसार में आप क्या कुछ भी प्राप्त करने के लिए, जैसे आप स्टडी करने के लिए दिन रात मेहनत करते हो फिर जाके आपको डिग्री मिल रही है, डिग्री मिली है आपकी मेहनत की वजह से, आप डिग्री से खुश हो रहे हो लेकिन वो इतना टाइम जो आपने दिया है अपना जान जलाई है उसका याद नहीं रहता, क्योंकि उस ऊंट को भी पता नहीं होता है कि मेरी मेरी ही मेहनत है, मेरा ही खून है जो मुझे
आनंद दे रहा होता है। उसी तरह से देखो, विवाह करने के लिए एक मनुष्य को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। पहले शुरू में 25 साल तक स्टडी करनी होती है, फिर अच्छी नौकरी करनी होती है, अच्छी तनख्वाह, फिर लड़की ढूंढो, उसके बाद विवाह करो। विवाह में आनंद हम फील करते हैं। वास्तविक क्या है कि जो चीजों को हासिल करने के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना खून पसीना जलाते हैं, वो चीज प्राप्त करने के बाद भी हमें सुख नहीं देती है, ये भी पता नहीं चलता। हर कोई लोग को पता है कि विवाह करने के बाद कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, बच्चे पैदा होते हैं, रोज बीमार होते हैं, बीवी की प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम, घर भी अलग चाहिए, खाना। अकेला बंदा जितना सुखी होता है ना, उतना सुखी ग्रस्त नहीं होता है, हर कोई जानता है, लेकिन फिर भी सोचते हैं कि इससे हमें सुख मिलेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये गलत है, लेकिन जो है सो है ना, उसमें करना क्या है, भगवान को आनंद कैसे प्राप्त करें। आप चाहे कुछ भी हो, ग्रस्त हो, ब्रह्मचर्य हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। इससे फर्क पड़ता है कि आप चाहते क्या हो, आपकी कॉन्शियसनेस क्या है। आप आनंद हासिल करना चाहते हो, भगवान कहते हैं असंभव। असंभव क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं असुखम अनित्यम असुखम लोकम। ये संसार में लेकर आनंद प्राप्त करना तुम्हारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि तुम नित्य हो। जीव नित्य है तो कहा जाता है, शास्त्र कहता है न अल्पे सुखम। क्योंकि तुम जीव हो, तुम नित्य हो, तो ये क्षण प्रकृति जो कि अल्प है, जो खत्म हो जाने वाली है, वो तुम्हें आनंद प्राप्त नहीं करा सकती। तुम्हें अपना आनंद प्राप्त करने के लिए किसी इटर्नल चीज, किसी नित्य, किसी शाश्वत चीज की जरूरत है, वही तुम्हें आनंद प्राप्त कराएगी। लेकिन फिर भी यहाँ पर जीव इतना मूर्ख है कि संसार में हमेशा अपने आनंद के लिए सोचता है। इवन भगवान के पास जाते हैं, वो भी सोचते हैं कि भगवान मुझे आनंद चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसे नहीं कहते कि मुझे आप चाहिए हो। क्योंकि हम सब कृष्ण के अंश हैं, तो हमारे अंदर प्रेम एक मुख्य वस्तु है। क्योंकि कृष्ण भी, कृष्ण ने आनंद प्राप्त करने के लिए, प्रेम प्राप्त करने के लिए संसार उत्पन्न किया था, तो हमारे अंदर भी प्रेम मुख्य वस्तु है। वास्तव में ये कृष्ण का प्रेम जो है, वही हमारा सनातन धर्म है। सनातन का मतलब होता है इटर्नल, और धर्म का मतलब होता है जिसने तुम्हें पैदा किया उससे प्रेम करो, वो आपका फर्ज है। तो वास्तव में जो भगवान ने हमें प्रेम दिया है, वो भगवान को लौटाने के लिए, जो कि उसको लौटाना है। जब मनुष्य संसार में आता है तो कंटिन्यू सोच रहा होता है कि ये प्रेम मेरे को जो मिला है वो किसको देना है, किसको मैं ये दूं प्रेम जिससे मैं सुखी हो जाऊं। तो पैदा होता है, बहुत रोता है, सबसे पहले माँ गोद में उठाती है तो प्रेम माँ को दे देता है कि माँ ये तुम्हारे लिए है। लेकिन आगे जाके इसको पता चलता है नहीं, ये माँ के लिए थोड़े था, ये तो पप्पा के लिए था, क्योंकि पप्पा हमें घुमाने फिराने लेकर जाता है। फिर थोड़ा बड़ा हो जाता है, बोलते नहीं मम्मी पापा के लिए थोड़ी था ये प्रेम, ये तो मेरे फ्रेंड्स के लिए था, सारा टाइम अपने फ्रेंड्स को देता है। और उसके बाद जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, बोले ये तो सारे ऐसे ही हैं फ्रेंड, इनके लिए नहीं था ये प्रेम, जो मेरा था वो मेरा बॉयफ्रेंड के लिए था प्रेम, इसलिए सारा का सारा प्रेम अपने बॉयफ्रेंड को ले देते हैं। और उसके बाद जब शादी हो जाती है तो प्रेम देते हैं अपने पति को, और पति के बाद प्रेम दे देते हैं अपने बच्चों को। लेकिन कभी भी संतुष्टि नहीं होती है, क्योंकि ये प्रेम उनको देने के लिए मिला ही नहीं था। प्रेम तो भगवान ने जो शाश्वत हमें प्रेम दिया है, भौतिक सृष्टि के संपर्क में आने से, उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम। कृष्ण ने प्रेम दे दिया कि जाओ तुम संसार में और सारी रिस्ट्रिक्शंस के साथ मुझे प्रेम करो, ये मेरी गेम है। और भगवान, हम जब संसार में जीव आ जाता है तो रजोगुण, अब क्योंकि मैंने आपको बताया प्रकृति के अंदर गुण है, तीन गुण के विषय में बताया था मैंने, प्रकृति के अंदर जो भगवान की भौतिक प्रकृति के विषय में बताया था उसमें गुण होते हैं, तीन गुण, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, ये मेन है। जब मैंने शुरू शुरू में 24 तत्व बताए थे, वो पूरे किए थे, पता नहीं फास्ट चल रही थी, याद नहीं आया। देखो, पांच महाभूत, ठीक है, पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां, पांच इंद्रियों के विषय, मन बुद्धि अहंकार, कितने हुए, 23 हुए ना, 20, ये पांच महाभूत, पांच ज्ञान इंद्रियां 10, पांच कर्म इंद्रियां 15, पांच इंद्रियों के विषय 20, मन बुद्धि अहंकार 23 हो गए, 23 टोटल। मैंने बोला था 24 तत्व हैं, जो महत्त्व है, ये जो अपर प्रकृति है उसमें 24 तत्व हैं, और 24वां तत्व है गुण। गुण तीन होते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, लेकिन ये तत्व एक माना जाता है। और जब रजोगुण की संगति हो जाती है किसी चीज से, अब देखो इनमें क्या होता है, जो सत्वगुण में अगर किसी को सत्वगुण
किसी के ऊपर हावी हो जाता है तो वो अच्छे काम करता है, रजोगुण हावी हो जाता है तो फिर वो ऐसे कार्य करता है, यानी कि इच्छाओं को पूरा करने वाला, कि मुझे ये इच्छा पूरी करनी है, मुझे ये इच्छा पूरी करनी है। और तमोगुण जिसके अंदर हावी हो जाता है वो क्या करता है, वो ऐसे ही सुस्ती, नींद और नशा, इस तरह की कार्य करता है। लेकिन तमोगुण का मतलब होता है मेन अज्ञानता, अज्ञानता वाले कार्य कर रहा है। और अगर हम सत्वगुण में हैं, रजोगुण में हैं या तमोगुण में हैं तो भी हम अज्ञानता ही है, क्योंकि मेन अज्ञानता में ही है हम, है ना। क्योंकि अज्ञानता का क्या मतलब होता है, आपको नॉलेज नहीं है। और हमारी मेन नॉलेज क्या है कि हम भगवान श्री कृष्ण ने हमें क्यों पैदा किया है, ये है मेन, कि भगवान के दास है और भगवान की सेवा करने के लिए पैदा हुए। लेकिन इस संसार में आकर हम अपनी इस रियलिटी को भूल जाते हैं और माया की सेवा करते हैं, इसका मतलब है हम सब अज्ञान में है, हम सब तमोगुण में है। और तमोगुण में रहकर ही रजोगुण के कार्य कर रहे हैं कि मैं ये प्राप्त करके खुश हो जाऊंगा, ये प्राप्त करके खुश हो जाऊंगा, ये प्राप्त करके खुश हो जाऊंगा। तो भगवान ने जीव को बनाया क्यों, अपने आनंद प्राप्त करने के लिए खुद को, ताकि मुझे आनंद प्राप्त हो कि जीव किस तरह से माया से फाइट करता है और मेरे पास आता है, मैं वो नजारा देखूंगा। लेकिन जीव संसार में आता है और बोलता है मुझे माया से फाइट नहीं करना है, मुझे तुम्हारी तरफ देखना नहीं है, मैं माया के अंदर रहकर खुशियां प्राप्त करूंगा। तो यहाँ से हमारी मेन प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि संसार में आकर हम अपने लिए आनंद की आनंद को चाहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण साफ साफ कहते हैं 9.32 में, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्वम माम। नालायक, मैंने इस संसार में तुम्हें इसलिए नहीं भेजा है कि तुम यहाँ पर आके मजा करो, ये जो संसार मैंने बनाया है इसके अंदर मैंने तुम्हारे लिए सुख नहीं रखा है, सुख रखा ही नहीं है, नित्य भी नहीं है। इस संसार में जो तुम्हें मिलेगा वो तुम्हारे दुख का कारण बनेगा, इसलिए एमम प्राप्य भजस्वमा, इसे प्राप्त करके इस संसार में आने के बाद तुम्हें एक ही काम करना चाहिए, भजस्वनामा, मेरा भजन करो, फिर तुम्हें सुख मिलेगा। आनंद की प्राप्ति तुम्हारा हक है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ कि आनंद केवल और केवल मेरा भजन करने से। भजन का मतलब होता है दो, या तो भगवान की कथा सुनो या भगवान का नाम लो, ये दो चीजें आपको करनी है संसार में आकर। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने हमें ये कार्य करने के लिए पैदा किया। और यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होया, वाई कृष्ण क्रिएट ये सारा नेचर को भगवान ने, और प्रकृति को और जीव को क्यों बनाया, इसके प्रति अगर कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।